परवाज दी, मैंने खुद को तबला आवाज दी। मैं चल पड़ी अब कोई भी रोको ना, मेरी सोच को जब परवाज दी, मैंने खुद को तबला आवाज दी, अब रोको ना। मुझे हर किसी ये मंजूर नहीं, मंजिल भी अब दूर नहीं, खुद क्षमा मैं जलाऊंगी राहों पे, मैं ही हूँ मेरा रहनुमा, खुद क्षमा मैं जलाऊंगी राहों पे, मैं ही हूँ मेरा रहनुमा।
शांति। तो रूहानी क्रांति के सूत्र इस अभियान का आज 29वां दिन है। तो 29वें दिन के अभियान में हम प्रवेश करेंगे और आज का जो इस अभियान का पायदान है वो है रूहानी डांस। कोई भी क्रांति जब घटती है, जब हम उसके सफलता के द्वार तक पहुंचते हैं, तो क्या करना होता है? गाना नाचना। तो हम इस सफलता की दहलीज पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि शेष 31 दिन का है अभियान, तो आज 29वां दिन है, 2 दिन बाकी है। फिर उसके बाद दूसरा महाअभियान चलेगा, कोई अभी अभियान है तो डांस जो है उसके बहुत फायदे होते हैं, स्वास्थ्य के हिसाब से भी और मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक फिजिकली और मेंटल, मानसिक स्वास्थ्य के हिसाब से भी डांस थेरेपी। क्योंकि डांस है जो हमारे मन के भावों को प्रदर्शित करता है। कहीं भी म्यूजिक वगैरह बजता है तो जिसको डांस नहीं भी करना आता है, लेकिन पांव जरूर उसका हिलने लगता है, सारे हिलेगा, पांव हिलेगा, हाथ हिलेंगे। इसलिए कई बार जो डॉक्टर होते हैं, जो अच्छे अच्छे डॉक्टर, वो मरीजों को ठीक करने के लिए वहाँ उनको म्यूज़िक भी सुनाते रहते हैं। जैसे अभी कोरोना काल में कई जगह से वीडियो आती थी, छोटे छोटे क्लिप, तो उनको मेंटली ठीक रखने के लिए डॉक्टर नर्सेज वगैरह नाचना गाना, उनको एन्जॉयमेंट, उनका रिफ्रेशमेंट करते थे, ताकि उनका जो मन है वो बीमारी की तरफ ज़्यादा नहीं जाए। पुलिस वाले भी, यहाँ तक भी, एक तो ऐसा भी पुलिस वाले का वीडियो आया था जो ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए डांस के तरीके से कंट्रोल करता था, और वो ट्रैफिक ना चाहते भी रुक जाती थी वो, अगर कोई ऐसे खुराफाती लोग जो निकल जाते थे वो भी रुक जाते थे डांस देखने के लिए। तो मन को नियंत्रण रखने के लिए डांस बहुत अच्छा माध्यम है ये। तो बाबा हमको रूहानी डांस सिखाते हैं, मन मना भव, सहज तरीके से हमारा जो मंत्र है काम करता रहे, उसके लिए रूहानी डांस अति आवश्यक है। जितना हम डांस करते रहते हैं उतना हम तंदुरुस्त रहते हैं, हल्के फुल्के रहते हैं। जो व्यक्ति डांस करता है तो डांस करने के लिए पहले उसको प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है, जो प्रोफेशनल डांसर वगैरह होते हैं उसके लिए शरीर का लचीलापन भी चाहिए, हल्कापन चाहिए, और शरीर ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए। मोटापा कौन सा आता है इस रूहानी क्षेत्र में, जिस्मानी क्षेत्र में, तो वो वगैरह कोलेस्ट्रॉल वो सब चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन यहाँ व्यर्थ संकल्पों का, आज भी है ना, व्यर्थ संकल्पों के लीकेज बंद करो, और उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती। और डांस सहज रूप से हो तो गीत भी वैसा चाहिए, गीत संगीत हो साथ में, उसके साथ महफिल भी वैसी हो, संग भी वैसा हो, देखने वाले भी हों, सुनने वाले भी हों, सामने से कोई वाह वाह करने वाले भी हों, तो डांस भी सहज होता है। फिर बंस मोर करने वाला कोई हो तो आज बाबा जो है इस रूहानी डांस की महफिल में कहाँ पर आए हैं? सागर के कंठे पर। कब आए थे? 82 में आए थे। कौन सी तारीख को? 4 तारीख को। महीना कौन सा था? जनवरी महीना। तो 4 जनवरी 1982 की ये अव्यक्त वाणी है। तो यहाँ बाबा जो देख रहे हैं सागर के कंठे पर आकर होली अंशों को देख रहे हैं। हंस सागर में होते हैं, झील में भी होते हैं। सागर में बहुत प्रकार के पंछी होते हैं। तो बाबा आकर देखते हैं होली अंशों को। क्या देखते हैं वो? कि होली अंश कितने ज्ञान के रत्न चूक रहे हैं और वो ज्ञान रत्न चूक कर कहाँ तक वो खुशी मना रहे हैं, आपस में कितने खुश हो रहे हैं। तो ज्ञान सागर बाप आए हैं ज्ञान सागर के कंठे पर होली अंशों की महफिल में। तो हर एक होली हंस जो है कितना वो अपने आप को रिफ्रेश कर रहा है, ज्ञान के नए नए रत्न एकत्रित कर अपने आप को रिफ्रेश कर रहा है। कितनी ये अलौकिक खुशी बढ़ती जा रही है। तो बाबा देख रहे हैं कि जो मैंने इनको भोजन दिया है वो भोजन खा के तंदुरुस्त हैं कि नहीं है, खा पी रहे हैं या नहीं खा पी रहे हैं, क्योंकि सबसे ताकतवर भोजन है वो, रिफ्रेश करने वाला है, एनर्जी देने वाला भोजन है वो, रूहानी एनर्जी इन्होंने कराई थी। तो ये भी एक ज्ञान डांस है, जैसे इन्होंने कराया था अरविंद भाई ने रूहानी बेहोशी, रूहानी मौज, रूहानी अथॉरिटी, रूहानी चित्तर, रूहानी आशिक, रूहानी चैन, रूहानी रहम दिल, रूहानी खुशबू, रूहानी खुशबू मेकअप, रूहानी इंजीनियर, रूहानी नूर, रूहानी एनर्जी, रूहानी लीला। तो ऐसे और भी नहीं आए, रूहानी डॉक्टर जी नहीं आए, रूहानी डॉक्टर, रूहानी जागृति, रूहानी रहम दिल, ये सब चीज़ें हुई हैं। तो ये भी एक डांस है, मन को नचाना है। डांस अर्थात हमारे जो पांव है थिरकते रहते हैं, ऐसे मन की भी थिरकन चलती रहनी चाहिए कहीं ना कहीं। जैसे पंछी उड़ते रहते हैं एक डाली से दूसरी डाली पर, दूसरी डाली से तीसरी डाली पर, जब तक उसको उड़ने नहीं आया तो माँ से पूछता रहता था एक छोटा बच्चा उसको। तो ऐसे भी बाबा हमारी माँ हैं, तो देखता रहता है बच्चे कब कितना तक उड़ पा रहे हैं। हमें अपने आप से ही परिचित कराते हैं बापा कि आपकी जो योग्यता कहाँ तक अभी कायम हुई है और कितना भी बाकी चलना है। तो हम भी उड़ रहे हैं, डांस कर रहे हैं। तो ज्ञान सागर बाप आए हैं, ये हेलीकॉप्टर है तो सागर के कंठे पर। तो बाबा देख रहे हैं कहाँ तक ये होली अंश ज्ञान रत्नों को चुग रहे हैं। और डांस के साथ बाबा कहते हैं मन के गीत भी चाहिए, मन ऐसे सहज नहीं नाचता है। तो हमारे यहाँ मन के गीत कौन से हैं? मन को मन मनाभाव रखने के लिए बाबा कहते हैं जैसे तुम बच्चे मन मनाभाव होते तो मन नाचने लगता है। ये मन मनाभाव बाबा का महामंत्र है, पहला पहला बाबा ने वरदान दिया है। और सारा खेल यहाँ हमारे मन के ऊपर ही होता है, क्योंकि सारा काम मन करता है। मन ही हर बात को रिसीव करता है और हर बात को भेजता भी मानिए। जैसे ईमेल में इंटरनेट में क्या होता है, सेंड एंड रिसीव। तो मन भी क्या कर रहा है, जो भी हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं, सामने वाला है बोल रहे हैं, जो सामने वाला सोच रहे हैं उसके भी हाव भाव चेहरे से पढ़ लेते हैं। कौन पढ़ता है? मन की आंखें देखती हैं वो। तो मन किसी को पढ़ भी रहा है तो मन रिसीव भी कर रहा है और मन फिर किसी को भेज भी रहा है। जो भी बाबा हम सबको मनसा सेवा के लिए कहते हैं कहाँ से होती है वो? वो हमारे मन से निकलने वाली जो संकल्पों के तरंगे हैं, जो वाइब्रेशन है, वो सारे मन के ऊपर आधारित है। तो मन बहुत शक्तिशाली है, इसलिए बाबा कहते हैं मन मनाभाव का मंत्र दिया हुआ है। मन सा सेवा को प्राथमिकता है। वो सेवा भले थका सकती है लेकिन मन की सेवा भी थका सकती है अगर हमारे पास में वो उतना सामग्री नहीं है, या मन को हमने समझा नहीं है, या मन को हमने हल्का नहीं किया है, मन को व्यर्थ संकल्पों से भारी रखा है। जैसे कल के वरदान में था कि आप बच्चे जब संपूर्ण स्थिति और संपूर्ण दो चीज़ें थी स्वरूप, अगर दोनों को स्मृति में रखेंगे तो आवागमन के चक्कर से छूट जाएंगे। आह्वान करो उसका, जो हमारी संपूर्ण स्थिति है और संपूर्ण स्वरूप है, केवल ये स्मृति रखें हम तो आवागमन के चक्कर से छूट जाएंगे। तो कितना सुंदर सहज है। तो मन को अगर हमने बिजी कर दिया, चाहे वो हम ड्रिल में बिजी कर देते हैं, चाहे परम धाम, सुख धाम, सूक्ष्म वतन, तो मन मनाभव मध्याजीव, ये बाबा ने हम सबको वरदान दिए हुए हैं। अगर हम इनको कार्य में लगाते हैं तो मन हल्का रहता है। मन हमारा भारी कब होता है? जब हम ज्ञान को भूल जाते हैं। मन भारी तब होता है जब सवेरे मुरली सुनी या यहाँ भी क्लास सुनी या कोई भी क्लास सुनी, जब हमको याद नहीं रहती है तो गिल्ट कॉन्शियस पैदा होती है कि सुना तो इतना हमने टाइम दिया भी है, सारा टाइम वेस्ट चल गया उसमें, भले उतना समय तो हम ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, लेकिन सारे दिन में अगर हमने उसके ऊपर गौर नहीं किया तो फिर क्या होता है वो, है ना। जैसे आज भी बाबा ने कौन से ख्याल तुम बच्चों को चलते रहेंगे, चलते रहने चाहिए, आई के मुरली में प्रश्न था ना कि अभी ज्ञान रत्नों से तुम बच्चे झोली भर रहे हो, कल के मुरली में, हाँ वो मनन शक्ति की मुरली, वो कितना सुंदर सेंटेंस, मेन मुख्य वही है कि जब जब हम मनन शक्ति में बिजी रखते हैं अपने आप को, तब तक तो मायाजीत बने रहते हैं, जैसे मनन शक्ति को छोड़ देते हैं, उससे विमुख हो जाते हैं, किनारे हो जाते हैं, तो फिर हम भारी हो जाते हैं। तो बाबा कहते चलते फिरते भी मनन शक्ति काम करती रहनी चाहिए, चाहे ऑफिस में, चाहे भोजन कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, सेंटर पर हो, कहीं भी हो, सेवा क्षेत्र पर हो, कर्म क्षेत्र पर हो, तो मनन शक्ति किसी न किसी तरीके से हमारी वो कायम रहनी चाहिए, तो हमारा जो मन है हल्का रहेगा। तो ये मन मना भाव का मंत्र है, और जितना हम इस मंत्र में अपने आप को बिजी रहेंगे तो अंदर का जो अपमान है, आलस्य है, अलबेलापन है, ये स्वतः किनारा करते जाएंगे। तो स्थूल रूप से भी हमको, जैसे जागे ब्रह्मचर्य में भी हमने देखा था, सुना था कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना है, तो स्थूल रूप से भी हमको संकल्प करने, जैसे हम करते हैं मैं आत्मा परम पवित्र हूँ, तो हम स्थूल रूप से कर सकते हैं। अगर हमको आत्मस्मृति का उतना भान नहीं है, एहसास नहीं है, तो हम यही सोच रहे कि मैं प्योरिटी का सागर हूँ, भले वो शरीर नजर आ रहा है, तो क्या होगा, वो प्योरिटी की एनर्जी हमारे शरीर में समाती जा रही है, प्योरिटी की खान हूँ, प्योरिटी का भंडारा हूँ, प्योरिटी का सागर हूँ, तो एनर्जी स्थूल से भी सूक्ष्म की तरफ जाएगी और हम अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। तो हमारे वाइब्रेशन निरंतर प्योरिटी के या सुख के या शांति के, खुशी के, प्रसन्नता के, निरंतर वो प्रवाहित होते रहेंगे, वो हमें भी सुख देंगे, हमें भी खुश रखेंगे और दूसरों को भी उसका प्रभाव डालेंगे, दूसरे भी उसका असर महसूसता अनुभव कर सकते हैं और उनका जीवन भी हल्का हो जाएगा। तो ये बाबा ने हम सबको तीसरी बात थी मन मना भव का मंत्र दिया हम सबको कि इस मंत्र को अपने जीवन में लाओ और ये महामंत्रधारी बन जाएंगे तुम बच्चे, वरदानी बन जाएंगे, महादानी बन जाएंगे, तो बिजी रहेंगे इसमें। फिर बाबा कहते भोलेनाथ के साथ तुम बच्चों ने सौदा तो बहुत अच्छा कर लिया, सौदागर भी हो तो जादूगर भी हो, तो कौन सा सौदा किया हमने बाबा के साथ कि दाता को ही अपना बना लिया, कोई वस्तु का सौदा नहीं किया, बाबा कहते उसको ही अपना बना लिया। तो ये सारी जो बातें ना जो क्रांति के बीच में बताया था कि चार बातों में डिवाइड करना है इस क्रांति को, जो भी हम मूल्य के ऊपर फोकस करते हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, तो सारे लिंक्ड है एक दो के साथ। ये ज्ञान भी एक तरीके से योग ही है, जब हम ज्ञान को पूरी तरह से पूरी एकाग्रता से तल्लीन हो जाते हैं, पढ़ते हैं उसको, मन बुद्धि को इधर नहीं जाने देते हैं, तो ज्ञान ही योग बन जाता है, उसमें हमारा मन बुद्धि पूरा एकदम एकाग्र हो जाता है। कई दफ़ा सबने अनुभव किया होगा, ज्ञान पढ़ते पढ़ते, मुरली पढ़ते पढ़ते, या मुरली चिंतन करते या मनन करते, योग से भी पावरफुल अवस्था का अनुभव होता है, क्योंकि ज्ञान तो बीज है ना, वो हमने बीज अगर बो दिया और उसको हम स्नेह का पानी दे रहे हैं, उसके ऊपर चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, उस संकल्पों पर ध्यान रख रहे हैं, तो नेचुरली वो योग का पूरा काम करेगा वो। तो ये सारे पॉइंट रिलेटेड हैं, और धारणा तो अपने आप हो ही जाएगी और सेवा भी अपने आप हो जाएगी, हो ही पड़ी है सेवा। तो ये चौथी बात थी कि सौदागर भी तुम बच्चे अच्छे हो, किसी वस्तु का सौदा नहीं किया तुम बच्चों ने, इतने सौदागर हो, होशियार सौदागर हो, जादूगर हो, कि जो दाता बाप है उसको ही अपना बना लिया, वो राजा को सीधा हाथ जाके लगा दिया बच्चे की तरह, दूसरी वस्तुओं को लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारा उसका मालिक है वो। तो दाता के बच्चे हो तुम बच्चे, तो सौदागर भी अच्छे हो, दाता को तुम बच्चों ने अपना बना लिया। फिर बाबा कहते तुम बच्चे विशेष भाग्यवान आत्माएं हो, कोटों में कोई हो, क्यों क्यों कोटों में कोई है, क्योंकि डायरेक्ट संबंध उससे जोड़ दिया है, डायरेक्ट संबंध उससे जोड़ दिया है और डायरेक्ट उसके साथ पार्ट प्ले कर रहे, संसार के से संबंध बिखरे हुए हैं, संबंधों में कड़वाहट आती जा रही है, दिन प्रतिदिन दूरियां बढ़ती जा रही हैं, विच्छेद होते जा रहे हैं, दुख बढ़ते जा रहे हैं, है ना। और आजकल तो हम संबंधों का देख रहे हैं, भले को जितना भी नज़दीक वाला हो, लेकिन जब कोरोना की चपेट में आ जाते हैं तो सब संबंध खत्म हो जाते हैं, उतना दूर भागते हैं सब लोग, कोई हाथ नहीं लगाना चाहते। देखा ना कई जगह वो वीडियो आते तो क्रेन से उठा के फेंक रहे उसको, दूर से डंडा मार के, जिसको गले लगाते थे उसको धक्का दे रहे हैं अभी। तो ये परिस्थितियाँ भी ऐसी आ गई, बीमारी भी ऐसी कि ना चाहते भी संबंधों को दूर रखना पड़ रहा है, माना जो पास है उससे हाथ नहीं मिला सकते और जो दूर है उसको बुला भी नहीं सकते, ऐसा समय आ गया अभी। तो हमारा संबंध डायरेक्ट भगवान से है, सर्व संबंध उसके साथ में, डायरेक्ट उसके साथ पार्ट प्ले करें। इससे बाबा कहते हैं अपने आपको साथी बनाओ, मुझे अपना साथी बना लो। इसलिए कहते हैं जिसका साथी भगवान क्या करेगा आंधी और तूफान। तो हर पल वो हमारा साथी है। तो हम कोटों में कोई में भी कोई विशेष आत्माएं हैं। तो और बाबा ने साथ में हमारे मस्तक पर विजय का तिलक लगा दिया। विजय का तिलक है, तुम लाइट हाउस हो। लाइट अमेरिका वालों से बीच में बाबा ने बात की है कि जैसे इस संसार में अमेरिका सबसे ऊंचा है आर्थिक स्थिति से देखो या किसी भी स्थिति से, तो बाबा कैसे ऐसे तुम बच्चे भी लाइट हाउस हो, सबसे ऊंचे तो ऊंचे हो। अगर तुम इस स्थिति में स्थित रहते तो लाइट हाउस और वाइट हाउस में कंट्रास्ट स्वतः नजर आएगा और वाइट हाउस भी तुम्हारा हो जाएगा। वो दूसरी मुरली में कहा हुआ है, इस मुरली में नहीं। तो लाइट हाउस माइट हाउस हो। और भी बाबा ने कहा कलकत्ता का विक्टोरिया ग्राउंड तुम्हारा हो जाएगा, है ना, बहुत सारे विज्ञान विज्ञान भवन तुम बच्चों का, वो तो पूरा वर्ल्ड ही अपना है। तो ये है कि बाबा हमको नशा चढ़ा रहे हैं, नशा और खुशी। तो डांस करने के लिए नशा भी चाहिए, खुशी भी चाहिए। जब तक नशा खुशी नहीं है तो डांस कोई करेगा कैसे? तो नशा खुशी हमको बाबा हर महावाक्य में नशे खुशी का इंजेक्शन लगा हुआ। काल भी इंजेक्शन लगाया था ना, कौन सा? मनमना बाबा का इंजेक्शन लगाया बाबा ने, कहा इंजेक्शन जल्दी काम करता है। कल डॉक्टर जी ने बताया था ना इधर, क्या था उनका वो टॉपिक? रूहानी इंस्ट्रूमेंट और एक रूहानी प्रसन्नता रोहित का। तो इंजेक्शन रात्रि क्लास में भी था, सुरेंद्र भाई जी करा रहे थे, इंजेक्शन लगा रहे थे सबको। तो इंजेक्शन जल्दी काम करता है। तो नशा और खुशी कायम रखता है हर बाबा के महावाक्य में। नशा है, खुशी है, उसमें ताकत है, एनर्जी है, अथॉरिटी है। तो उसको हमको गहराई से पढ़ना। और ये नशा तुरंत नहीं चढ़ता, लंबे समय तक पीते रहेंगे पीते रहेंगे पीते रहेंगे तो हम पेक्कड़ बन जाएंगे और नशा चढ़ रहेगा फिर। तो डांस स्वतः होता रहेगा, नहीं तो किताब को हाथ लगाने में मन नहीं करता है अव्यक्तवाणी को चाहे सुस्ती आती आलस्य आते हैं। और ये और जिसको डांस करना तो उसको आलस थोड़ा नहीं आता है, उमंग उत्साह रहता है। उसको देख के 100 लोग नाचने के लिए तैयार हो जाते हैं, है ना। हाँ, नचा भी देते हैं। हमारे यहाँ जगदीश बाबू जी हैं, 72 ईयर एज है, वो जिम में जाते हैं, गाना लगता है ना तो नाच पड़ते हैं। देखे 72 ईयर एज में उनको देख के भी दूसरे भी डांस करते हैं, भांगड़ा जो भी है। तो डांस जो है ये हमको करते रहना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ औषधि है डांस। उससे कई प्रकार की बीमारी खत्म हो जाएगी। अधिकतर बीमारियां तो मनुष्य को कहाँ से है, मन से है ना। तो हमको रूहानी डांस करते रहना है। और इस रूहानी डांस में तो ईश्वर की ताकत भरी हुई है। स्थूल डांस, वो स्थूल डांस अपने आप ही हो जाएगा अगर वो करेंगे। स्थूल डांस तो अति अनिवार्य है, वो करेंगे तो रूहानी डांस हो, है ना। तो वो तो बाबा कहते हैं बाथरूम में भी करो माना निरंतर, नहीं तो वो जो बैंजी सुना रहे थे ना इधर, कौन से बैंजी सुना गए, बाहर निकलो अभी, नहीं शैलेंद्र भाई सुना रहे थे इधर कि अंदर बैठे थे, उनको पता चल जा बाथरूम के अंदर गए तो भाई बाहर निकलो। तो वो तो आत्मा की प्रैक्टिस वहाँ भी कर रहे थे, तो बोला शरीर से बाहर कैसे निकला, वो इतनी प्रैक्टिस उनकी पक्की हो गई है। तो बाबा के हर महावाक्य में एंजॉयमेंट है, रमणीकता है, खुशी है, एक नवीनता है उसमें। लेकिन वो नवीनता तुरंत लंबे समय के अभ्यास के बाद उन पर हमारा दृष्टि उन पर पड़ती रहे, उन पर हमारा फोकस हो, देखते रहें, सुनते रहें, सुनाते रहें, चर्चा करते रहे, तो वो कुछ नवीनता नजर आने लगती है, नहीं तो आती थोड़ी नहीं। एक ही एंगल से अगर हम एक ही चीज़ को देखें तो वो सामने हमको एक ही चीज़ दिखाई देगी, लेकिन हम उसके प्रक्रिया करते रहे, देखते रहे देखते रहे, हर एंगल से हर पहलू से उसको देखेंगे तो नई नई चीज़ें दिखाई देगी वो। जैसे हमको अगर यहाँ माउंट आबू ओम शांति उनके खड़े ऊपर देखें, खड़ा होकर देखें तो थोड़ा सा दिखेगा ना, लेकिन ऊपर चले जाओ तो उसका कुछ आनंद ही और है, वहाँ तो चारों ओर का दिखेगा, इतने सुंदर व्यू दिखेंगे। तो ऐसे इस ज्ञान को भी हमको नए नए तरीके से दृष्टिगोचर तभी होता है जब हम इसको नए नए तरीके से देखते रहते हैं। अब ये रूहानी एक ही चीज़ श्रृंखला चली है रूहानी वाली, और इसमें कितनी सारी बातें हैं, उसके अलावा बहुत सारी बातें भी और हैं। हमने देखा रूहानी वायुमंडल, रूहानी वाइब्रेशन, बहुत सारी चीज़ें रूहानियत के बारे में। तो कितनी सारी बातें सुन ली हमने, रूहानी रुहाव, रूहानी खुशी, रूहानी प्रसन्नता, रूहानी वायुमंडल है, ये प्रसन्नता देखो खुशी हो रही है, रूहानी आशिक, तो कितनी सारी बातें हैं। तो हर एंगल से हम ज्ञान को देखते रहेंगे तो डांस हमारा निरंतर होता रहेगा। तो ये वाली भी बात थी। फिर बाबा ने कहा आप विशेष भाग्यवान आत्माएं हो, क्योंकि स्वयं भगवान ने आपको चुना है ना, ये जापान वाले पार्टी होंगी। तो क्योंकि आप भगवान को ढूंढ नहीं सकते थे, क्यों नहीं ढूंढ सकते थे, भले ढूंढा प्रयास किया लेकिन ढूंढ नहीं सकते थे, क्यों? क्योंकि क्योंकि पहचान ही नहीं है, हाँ जी, मैथड ठीक नहीं है और पहचान भी तो ठीक नहीं है, पहचान भी तो ठीक नहीं है। अगर हमारे सामने भगवान है वो ऐसा है, उसके ये गुण हैं, विशेषताएं हैं, ऐसी आकृति है या नहीं है, वो तो हमको पता ही नहीं था। रहता कहाँ है? विलायत में, विलायत मने परमधाम। तो हमको तो उसका आइडिया नहीं था ना, तो इसलिए बाबा कहते तुम विशेष हो, स्वयं भगवान ने तुमको आगे चुना है, तो चुने हुए विशेष रत्नों। तो विशेषता ये हमेशा याद रखो। और बाबा ने कहा जो सुनते हो वो समाते जाओ, मेन मुख्य बात एक ही मुरली में, जो सुनते हो वो समाते जाओ। इससे क्या होगा? बाबा कहते हर एक गुण ज्ञान शक्ति है, वो जब स्वयं समाते जाएंगे तो जो भी कर्म क्षेत्र विघ्न आएगी, समस्या आएंगी, परिस्थितियाँ आएंगी, उनको सामना करने की ताकत आ जाएगी, शक्ति आएगी, क्योंकि माया तो आएगी आएगी, जैसी स्मृति वैसी स्थिति। हाँ, तो जो ज्ञान समाएंगे वो हमारा हो जाएगा ज्ञान। तो हर गुण का अनुभव करना, उसमें अथॉरिटी बनना है, तो माया से सेफ रहेंगे। और माया फिर खेल लगेगी ये, और खेल में क्या होता है, एंजॉय। तो फिर खेल में क्या करते हैं? डांस करते हैं। तो हमको डांस तो करना है, रूहानी डांस करना है, माया भी डांस करेगी। फिर इस मुरली में बाबा ने बहुत सारे टाइटल दिए, अगर हम देखा कम से कम 30-32 टाइटल हैं। फिर बाबा ने कहा तुम शो केस के शो पीस हो, तो शो पीस जो शो केस में किसको रखा जाता है? जो चुने हुए विशेष होते हैं, है ना। जैसे कोई अनाज चुनता है तो अनाज में से क्या चुनते हैं? पत्थरों को चुनते हैं, उसमें थोड़े होते हैं। लेकिन बाबा ने हमको पूरे संसार से इतने हीरे, थोड़े हीरे, उनको चुना है हमको, और चुनकर कहाँ रखा? शो पीस में। यहाँ बाबा जापानियों से मिल रहे हैं, और उनकी विशेषता बताइए, पंखे की विशेषता है, और वो गोल्डन डॉल्स हैं, ऐसा बाबा ने उनको टाइटल दिया। तो हम शो केस के शो पीस हैं, तो शो पीस के ऊपर सबकी नज़र रहती है, और शो पीस के ऊपर पूरी उसका साफ सफाई, उसको कहाँ रखा जाता है, कितने अमूल्य वस्तु सामने रखा जाता है, जिस पर सबकी तो हम विश्व की स्टेज पर हैं, सारे संसार की नज़र हम आत्माओं के ऊपर है, सबसे आगे बैठे हुए हैं। तो शो केस के शो पीस हैं, तो ये भी हमको स्मृति रहे। तो एक ही पॉइंट को अगर हम स्मृति में रखें तो मन जो है ना डोलता रहेगा, बार वो डांस करता रहेगा, पाँव थिरकते रहेंगे, मन डोलेगा तन भी डोलता रहेगा। तो ये एक ये बात थी। फिर बाबा ने दादियों से दीदियों से भी बात की है, क्योंकि रात रात भर चलता रहता था बाबा से मिलन। तो बाबा ने कहा देखो बच्चे अथक होके जागरण करना पड़ता है, इनको थकते नहीं। तो उनकी महिमा गाई कि देखो उनके बगैर शास्त्र लिखे जाए तो कितने शास्त्र बन जाए। तो ये अनेक प्रकार की बातें हैं जो बाबा हमको डांस कराने के लिए, हमारे मन को हल्का रखने के लिए अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र मंत्र देते रहते हैं। हाँ, जो सुनते हो समाते जाओ, विजय का तिलक लगा लो, विशेष भाग्यवान। हाँ, फिर बगीचे को याद किया, अल्लाह के बगीचे के फूल हो। ये वास्तव में मुरली मनसुख भाई को दी थी। तो अल्लाह के बगीचे के फूल हो, और फूलों में क्या होता है? खुशबू होती है, खुशबूदार फूल होते हैं। फूलों के बारे में बाबा ने, कोई तो फूल रंग वाले होते हैं, कोई रूप वाले होते हैं, कोई खुशबूदार होते हैं। तो हम हैं अल्लाह के बगीचे के फूल। तो अल्लाह के बगीचे के फूलों में रंग भी होगा, रूप भी होगा, खुशबू होगी, सब चीज़ होगा उसमें। तो ये चीज़ है, खुशबूदार फूल है। तो कितनी सारी बातें हैं। तो मन को मन बना रखने के लिए ज्ञान का कोई ना कोई बिंदु हमारे मन बुद्धि में टपते रहना चाहिए, ताकि निरंतर हम हल्के रहें, रिफ्रेश रहें, ना केवल हम बल्कि औरों को भी रिफ्रेश करते रहें। और धीरे धीरे मुरली को पढ़ते रहे अपने आप पॉइंट याद हो जाते हैं, उसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी पड़ती है। दो चार बार कर दो, फिर सोचते रहो, फिर अपने आप ही कुछ ना कुछ बाप, क्योंकि काम तो उसका है, अपने को क्या करना। जैसे बताया ना कल, बैंजनी इंस्ट्रूमेंट समझ के बैठ जाओ, काम तो उसको करना है, टेंशन तो ली निकालो। उन्होंने जैसे पढ़ के सुना दिया, टेंशन उसकी नहीं, याद हुआ तो क्या करने का, उसकी टेंशन है, अपने को क्या करने का। तो बाबा ने सब साधन दिए हुए हैं, टेंशन तो सुनने वाले को होगी, याद नहीं रहता। तो वो काम तो उसका है ना, वो अपने आप करेगा, वो फिर आगे ताकत भरे। हाँ, हिम्मत रखनी पड़ेगी, हाँ हम अगली बार भी कराएंगे, तो वो अपने आप बुद्धि को क्लियर कर देगा। हाँ जी, नहीं तो उसके अनुसार ही होगा। तो ये सारी चीज़ें सीखने वाली मिलती हैं, चाहे कोई पढ़ के सुना रहा है, लेकिन देखो कितना हिम्मत रख के आया अगला दर, पढ़ के भी तो सुना रहा है ना, बहुत हिम्मत रखी है ना। पहले तो कहीं उनका पेट भी दुखता था सुनाने में, अभी पेट दुखना भी बंद हो गया कितने सालों बाद। हाँ, अभी सामने वाले तो माना ये बाबा हेल्प करता है किसी ना किसी तरीके से। तो कितनी सारी बातें होंगी। तो हमको मन को हल्का रखने के लिए मन को लचीला रखना है, मन में उमंग सा कायम रखना है, ऐसे व्यर्थ संकल्पों का भोजन नहीं करना है। क्योंकि हम जब ग्रिष्ट भोजन करते हैं, ऐसा वैसा भोजन करते हैं, जैसे मोटापा बढ़ता है, कितनी प्रकार की बीमारियाँ होती हैं, तो ऐसे मन को भी शुद्ध संकल्पों का भोजन देते रहना है। हाँ जी, हाँ छोले भटूरिया तली खट्टी चीज़ें खाते हैं वो हमारे लिए नुकसानदायक होती हैं वैसे भी शारीरिक रूप से। हाँ उनसे हमको सीखना है, वो हमको सीख के तुम नहीं खाओ ऐसे, हमने खाए तुम नहीं खाओ, हमारी तरफ से भी खा लो। तो अच्छा भोजन करना हमको, ज्ञान रत्न तो सारा एक एक ज्ञान रत्न तो शुद्ध भोजन है एकदम, है ना, वो जैसे बिना गुठली के आम जैसा है, उसको खाते रहो खाते रहो खाते रहो तो मन तंदुरुस्त रहे। बूंदी के लड्डू की तरह है वो, मना पूरा खाने वाला ही होता है, छिलका नहीं है। तो पहली बात सुनी हमने, कौन सी बात थी पहली? नहीं नहीं वही तो सुनाई, कौन सी? कि सागर के कंठे पर रहना हमेशा। तो सागर के कंठे पर क्या होगा फिर? सागर याद है, सागर में अनेक प्रकार की लहरें निकलती, जैसे साकार मूल्य में क्या होता है, अभी अभी यहाँ, अभी अभी वहाँ, अभी अभी वहाँ, अभी अभी यहाँ। तो सागर के कंठे पर अनेक प्रकार की लहरों में लहराते रहेंगे, अनेक प्रकार के जो ज्ञान रत्नों के जो मोती हैं बाबा, उनको हम होलियंस बनकर चुकते रहेंगे, तो खुशी में हम डांस करते रहेंगे। मन भी डांस करेगा, तन भी डांस करता रहेगा, तल भी हल्का फुल्का रहेगा। और डांस करने के लिए बाबा कहते हैं मन के गीत, जब तक गीत नहीं है तब तक डांस भी जिस स्पीड से होगा उस स्पीड से नहीं होता है। अंदर ही अंदर डांस तो चलता रहेगा, तो अंदर की बात सारी। तो वो मन के गीत कौन से हैं? जैसे बाबा कहते हैं मन मना भभुए, तो वो मंत्र काम करना, क्योंकि बाबा ने पहला पहला वरदान दिया मन मना भव, तो इस वरदान में सारे गीत समाये हुए हैं मन मना भव में। जैसे प्राप्तियों के गीत है उसमें कितनी सारी प्राप्तियाँ होती है, उसमें सर्व सुंदरों के गीत समाये हुए हैं, स्वर्ग के गीत समाये हुए हैं, नरक के भी गीत समाये हुए हैं उसमें, है ना। नरक से माना वैराग्य आए ना, तो वो भी तो गीत है ना। वो कितना कहाँ मिलेगा बाबा तेरा ऐसा प्यार, प्रभु मिलन की मस्तियों में, कितने अच्छे अच्छे पुराने गीत। शुरू शुरू में तो गीतों में योग चलता था, बिना गीत तो योग करते नहीं थे, लेकिन वो पुराने गीतों में इतनी ताकत है, उनमें इतना आकर्षण है, चुंबकीय आकर्षण है, कि एकदम मन को कंट्रोल कर देते थे, आंखों से आंसू बहाने के लिए मजबूर कर देते थे। वो वाले गीत ऐसे थे शुरू शुरू में, तो वही किया था, ज्ञान तो इतना समझ में था, लेकिन उन गीतों में परमात्म प्यार इतना भरा हुआ है, शायद उस समय की वो जो गीत हैं वो उन्होंने इतनी साधना की होगी सबको अनुभव कराने के लिए। लेकिन अभी वो गीतों का थोड़ा ये हो जाता है कंपटीशन वगैरह, विस्तार हो गया सारा। तो ये गीत भी मन के गीत, कौन से गीत हैं? मन मना भव में बहुत सारे गीत समाये हुए हैं। तो मन हमेशा हमारा रूहानी डांस में तलीन रहेगा, बिजी रहेगा। तो ये दूसरी बात थी मन के गीत। तीसरी बात थी कौन सी थी? ये तीसरी मन मना भव का मंत्र। फिर चौथी थी, तुम बच्चे अच्छे सौदागर हो, सौदागर भी हो, जादूगर भी हो, क्योंकि तुमने छोटा मोटा सौदा नहीं किया है, ऊंचे से ऊंचे बाप को उसके साथ सौदा किया है, बल्कि दाता बाप को ही अपना बना लिया है। तो जो उसके साथ है वो हम सबको दिखेगा। फिर विशेष आत्माओं कोटों में कोई आत्मा नहीं हो, क्यों? क्योंकि डायरेक्ट बाप के साथ संबंध है, डायरेक्ट बाप के साथ हम भगवान के साथ पार्ट प्ले कर, कितनी बड़ी बात है, हमारा पार्ट भगवान के साथ है, बताया था ना उस दिन, भगवान के मददगार हैं हम, कितनी बड़ी बात है। एक ही पॉइंट कितना नशा है, भगवान के मददगार है। तो बाबा हम बच्चों को कहाँ, वो कहते हैं ना कंधे कूल्हे पर रखते हैं, अपने सिर पर रखते हैं, तो ये विशेष आत्माएं कोटों में कोई, फिर विशेष भाग्यवान आत्माएं हो, लाइट हाउस हो, माइट हाउस हो, विजय का तिलक तुम बच्चों को लगा हुआ है, फिर रूहानी बगीचे के फूल हो, गोल्डन डॉल्स हो, तो अनेक प्रकार से वरदानों से सोमान से बाबा हमको श्रृंगारते रहते हैं। अगर हम इनको अपने मन बुद्धि में विचरण करते रहें तो मन हमेशा हमारा रूहानी डांस में बिजी रहेगा, हल्के फुल्के रहेंगे और एन्जॉयमेंट करते रहेंगे, और फिर स्वर्ग कैसे आएगा वो भी हम देखते रहेंगे इन्हीं आँखों से। ओम शांति। उन्होंने तो लूटने के उद्देश्य से उनको घेरा था, फिर उन्होंने पूछा भाई आपको डांस आता है? तो उन्होंने बोला हाँ आता है। तो वो थोड़ा दूर किया और ऐसा भागे वहाँ से, बात मत पूछो, बोला ये डांस कौन सा डांस है? भागने का डांस। ओम शांति।